हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का अमेरिका में जो आगमन था, उस मंगल तिथि के अवसर पर हम चिंतन करते हैं कि इस प्रसंग का क्या महत्व है। जब श्री प्रभुपाद जी अकेले लगभग 70 साल की उम्र में बिना किसी पैसे के, बिना किसी साथी के, बिना किसी सहायता के अकेले अमेरिका गए, वो भी एक माल जहाज पे, तो ये विश्व के इतिहास में एक बहुत ही अनूठी और अद्वितीय घटना है। जबकि कोई योद्धा कोई बड़े युद्ध पे जा रहा है और बिल्कुल अकेला जा रहा है। साधारणतया जब कोई योद्धा अपनी सेना को लेके जाता है युद्ध करने के लिए, छोटी सी सेना उसकी है और उसके विरुद्ध में विशाल सेना है और वो जीत जाता है, तो बाद में लोग जानना चाहते हैं क्या आपने क्या योजना बनाई थी, आपका क्या रचना थी युद्ध की, आपकी सेना की, जिससे कि आप इस प्रकार का अनपेक्षित विजय प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद जी के हृदय में क्या चल रहा था जब वो इस तरह से छोटी सी सेना लेकर पर अकेले जाकर जो विश्व का भौतिकवाद का राजधानी था अमेरिका, वहाँ पे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के संदेश के द्वारा आक्रमण करने वाले थे। और हम प्रभुपाद जी की जो युद्ध की योजना थी वह जाननी है तो हम उसको उन्होंने जो मार्किने भागवत धर्म जो बंगाली कविता अमेरिका जब उन्होंने देखा अमेरिका का तट जो तभी उन्होंने लिखी उसमें हम देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी इतना साहसी आक्रमण करने जा रहे हैं पर अंदर से वो इतने विनम्र इतने खुद को असहाय मान रहे हैं और फिर भी उनका इतना विश्वास है, वो आत्मविश्वास नहीं है वो भगवत विश्वास है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं वो जब देख रहे हैं अमेरिका को, वहाँ पे गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़े कार है और आलीशान पद्धति से रहने वाले अमेरिकी लोग हैं, पर प्रभुपाद जी ये सब नहीं देख रहे। वो क्या देख रहे हैं, ये देखो ये जीवात्मा है जो भगवान को भूल गए हैं और रजो तमो गुण के प्रभाव में इधर उधर खींचे जा रहे हैं। यह प्रभुपाद जी के शास्त्र चक्षु है कि भौतिकवाद का सबसे आकर्षक प्रदर्शन भी प्रभुपाद जी को बिल्कुल प्रलोभित नहीं कर सका। और प्रभुपाद जी अपने हृदय की करुणा के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो, मेरे वचन उनको समझ में आ जाए इसकी आप मुझे, इसके लिए आप कृपा दो आपकी। तो जब प्रभुपाद जी बोल रहे मेरे वचन समझ में आ जाए उनको, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी का विश्वास है कि भले ही इन लोगों ने आज तक कृष्ण का नाम नहीं सुना है पर फिर भी अगर वे कृष्ण कथा सुनते हैं समझते हैं तो वो धीर हो जाएंगे। भागवतेर कथा से तब अवतार धीर है शून्य जदि काने बार बार। फिर प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि अगर कोई भागवत कथा बार बार सुनता है तो वो धीर बन जाएगा। और प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वचन उन्हें समझ में आ जाए, तो ये केवल उनके उच्चारण की बात नहीं है, प्रभुपाद जी को चिंता ही नहीं है, पर वो उनको विचार है कि उनकी सांस्कृतिक पद्धति से, बौद्धिक पद्धति से एक बहुत बड़ी खाई है प्रभुपाद जी और उनके जो संदेश सुनने वाले हैं श्रोता उनके बीच में। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कृपया आप इस खाई के पार मुझे ले जाओ। और प्रभुपाद जी बोलते आप मुझे नचाओ, जैसे काष्ठेर पुतली जैसी होती है, जैसे पुतली होती है उससे आप मुझे नचाओ। और प्रभुपाद जी की प्रार्थना की पूर्ति भगवान कृष्ण ने कैसे चमत्कारिक पद्धति से की, इस तरह से प्रभुपाद जी को नचाया कि इतिहास में ऐसी कोई और घटना नहीं है कि 14 बार प्रभुपाद जी ने विश्व भर भगवान कृष्ण की सेवा में नृत्य किया और हजारों हजारों की संख्या में लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित किया। तो जो चुनौती प्रभुपाद जी ने जीती उसकी तुलना अगर हम हमारे लिए जो चुनौतियां हैं भक्ति में उससे करते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं चुनौतियां वो इतनी छोटी सी है। तो हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, आपने सारे विश्व के कल्याण के लिए, आपने मेरे कल्याण के लिए इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकार की है, अकेले परदेश में जाकर भगवान कृष्ण का संदेश का प्रचार किया है, तो कृपया आप आपकी जो दृढ़ संकल्प है, जो भगवान कृष्ण में विश्वास है, उसका एक बूंद जो है आपके हृदय में सागर के समान है, मुझे एक बूंद दे दीजिए ताकि जो समस्या मुझे सामना करनी पड़ती है उन्हें मैं जीत सकूं उनके खिलाफ, और आप जो भेंट दे रहे हैं स्वीकार कर सकूं कृष्ण भक्ति का, और वह दूसरों को भी वितरित कर सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय।